ज्ञानंजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नयमां चरणन्ति ते। मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अपनी कोटि कोटि आंतरिक श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित श्रोतृवृंद मैं अपना यथा योग्य अभिवादन आप लोगों को अर्पित कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इस बंबई जैसे शहर में मुंबई जैसे शहर में सत्संग भवन बनाने के लिए जो प्रेरणा दी उस मूल संत जी को भी मैं अपनी आंतरिक श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। पश्चात जिन व्यक्ति ने अपने धन का उपयोग कर ऐसा सुंदर सत्संग भवन बनाया जिसमें विश्व के लोग साधु संत पुरुष लोग अपने अपने विचारों को व्यक्त करके लोगों में भगवान के प्रति श्रद्धा वृद्धि करने के लिए चेष्टा करते हैं। हमारा इन्होंने जो परिचय दिया, मैं बहुत ही दीनहीन तृण से भी दीनहीन हूँ, मेरी कोई योग्यता नहीं, मैं तो वृंदावन में किसी प्रकार से लोगों में से माधुकरी लेकर जीवन निर्वाह कर किसी प्रकार से राधा कृष्ण के एकांतिक भजन करने की चेष्टा करता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा में हम लोग हैं जिन्होंने अपने कीर्तनों के माध्यम से विश्व में विश्व प्रेम को, कृष्ण प्रेम को, गोपी प्रेम को, ब्रज प्रेम को जगत में दिया। आज विश्व में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जहाँ पर लोग राम और कृष्ण को नहीं जानते, श्रीमद् भागवत और गीता का अनुनयन नहीं सुनते। ये सब वही चैतन्य महाप्रभु जी की अपार करुणा है। उनकी एक दो भुजाएं विश्व में सर्वत्र जाकर के और गीता वेद पुराण उपनिषद की प्रतिष्ठा की। मैक्स मुलर विद्वान पहले थे जो संस्कृत सीख करके भारतवर्ष में गए और वेदों का संस्कृत का अंग्रेजी में सबसे पहले अनुवाद किया, उसके बाद में और जगह अनुवाद हुए, किंतु उनका लक्ष्य हमारी वैदिक संस्कृति का प्रचार नहीं था बल्कि उनका उद्देश्य कुछ और था। जब वेद उपनिषद केवल मैथोलॉजी हैं, भूल भ्रांतियां इसमें है, इस चीज को उनको दिखाना था, इसलिए उनकी परंपरा ठीक नहीं थी। चैतन्य महाप्रभु जी ने कुछ ही दिनों में अपने परिकरों को पश्चात देशों में भेजा और उन्हें यथार्थ भारतीय संस्कृति क्या है, गीता का लक्ष्य क्या है, भागवत का लक्ष्य क्या है, हमारी वैदिक संस्कृति क्या है, आत्मा क्या है, इस चीज का अत्यंत सरल सहज शब्दों में कीर्तन के माध्यम से सबके प्रति हृदय में प्राण का स्पर्श और संचार किया। उन्होंने कुछ दिनों में ही उन्होंने विश्व में सर्वत्र अपने शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा कृष्ण नाम का सर्वत्र प्रचार किया और उन्होंने दिखलाया हरेर नाम ऐव हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। भगवान नाम के कीर्तन के अतिरिक्त भगवान को सर्व सहज रूप में पाने का और कोई दूसरा तरीका नहीं। इसलिए मैं अपने को भी भाग्यशाली समझता हूं कि उस परंपरा में हम लोग आए हैं। आज का विषय कुछ श्रीमद् भागवत का है। मैं भागवत में जो अपने गुरु वर्गों से कुछ सुना है उसका अनुशीलन किया है, मैं आप लोगों को सर्वसहज में कुछ देने की चेष्टा करूंगा। एक समय की बात है, व्यास जी वेद अभ्यास ये अपने आश्रम में साम्याप्रस्थ एक आश्रम था, भगवती गंगा और जो सरस्वती जहां पर मिलती थी, बड़ा सुंदर निर्जन और बहुत ही रमणीय आश्रम था। वहां पर आश्रम में बैठे हुए थे। आज वो कुछ क्षुब्ध से हैं, चित्त अशांत है, कुछ मुख सूखा हुआ है, कुछ चिंता कर रहे हैं। इतने में जगत गुरु देवर्षि नारद वहां पर उपस्थित हुए। व्यास जी उठ करके आश्रम से उनके चरणों का अभिवादन किया, उन्हें अर्घ इत्यादि दे करके और वहीं पर बैठ गए। नारद जी ने कहा, कुशल है कोई त्रुटि तो नहीं है चित्त में? आपका चित्त कुछ क्षुब्ध दिखता है, कुछ मुख उदास है, क्यों? व्यास जी ने उत्तर दिया, मैंने वेदों का आचार विभाग किया, बहुत कठिन चीज है, तो भी मैंने लोगों के कल्याण के लिए उसका चार भागों में विभाग किया और अपने चार शिष्यों को इसकी शिक्षा दी, सामवेद ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद को अपने शिष्यों को वैशंपायन पैल सुमंत और जैमिनी को दिया, और पंचम जो वेद है भारत उसको सुत गोस्वामी को लोमहर्षण सूत को मैंने शिक्षा दी। इसके बाद मैंने देखा ये बहुत कठिन है, लोग इसको समझ नहीं सकते, तो मैंने स्त्रियों को भी और शुद्ध तक भी जीव मात्र को कुछ शिक्षा देने के लिए मैंने महाभारत की रचना की और उसमें गीता जैसे रत्न को मैंने प्रकाश किया। इसके बाद हमने वेदांत दर्शन समस्त उपनिषदों का सार मैंने लिखा। इसके बाद में हमने 18 पुराण बनाए, 18 उप पुराण और शाखा पुराण हमने बनाए, जिसमें हमने सत्कर्म धर्म इत्यादि की पूरी शिक्षा दी। मनुष्य क्या क्या धर्म है, प्राणी मात्र का धर्म क्या है, पति का स्त्री के प्रति क्या धर्म है, पुत्र का पिता के प्रति क्या धर्म है, स्त्री का अपने पति के प्रति और पति का स्त्री के प्रति और देश के प्रति राष्ट्र के प्रति इत्यादि के प्रति हमारा क्या धर्म है, इसको भी उसमें लिखा। इस प्रकार से मैंने सब कुछ लिखकर और जगत में इसकी शिक्षा दी, तो भी आज मेरा मन आत्मा प्रसन्न नहीं है। तथापि नात्मा परिस्तुष्यते, मेरी आत्मा आज प्रसन्न नहीं है। क्यों मैं नहीं समझता? रोगी अपना रोग नहीं जानता, रोगी तो डॉक्टर वैद्य के पास में जाता, वो नाड़ी पकड़ करके बतला देगा ये आपका क्या रोग है, रोगी को बोलना नहीं पड़ता। हमारे कलकत्ते में बीसी रॉय थे, बंगाल के पहले चीफ मिनिस्टर प्रथम उनके पास में एक रोगी गया, उसका घर वाला उसको लेकर के गया, ये इसको जरा देखना है इसको क्या हो गया है। उन्होंने कहा जी तुम रोगी है या वो रोगी है, जो ले गया था उसको उन्होंने कहा जी तुम रोगी है ना वो रोगी है, नहीं वही रोगी है। उन्होंने कहा नहीं तुम रोगी है, अभी तुम्हारा इलाज होना चाहिए। और देखते देखते उसका ब्रेन हेमरेज हो गया और वो झट गिर गया और वो मर गया। तो वैद्य लोग और डॉक्टर लोग इसको समझते हैं ये क्या रोग है, इसलिए आप कृपा करके आप ही हमारा रोग निर्णय कीजिए। मेरा मन अभी तक प्रशांत क्यों नहीं है, क्यों उदास है? उन्होंने कहा आपने सब कुछ किया किंतु आपने भौतम अनुदितम प्राय भगवत जसा, आपने ये सब कुछ लिखा किंतु कुछ कंफ्यूजन लोगों में हो गया, संदेह कुछ लोगों को हो गया। भगवान ब्रह्म तो एक हैं, किंतु आपने ऐसा लिखा, कहीं लिखा जी गणेश जी सबके आराध्य हैं, कहीं आपने लिखा ब्रह्मा ही जगत की सृष्टि करने वाले हैं ये जगत के आराध्य हैं, कहीं आपने शंकर जी को लिखा जे शंकर जी भगवान हैं सबके आराध्य हैं, कभी देवी को महिमा आपने पुराणों में लिखी, किंतु इसका सामंजस्य क्या है आपने अभी तक नहीं दिखाया। परतत्व एक है तो ये अनेक दिख रहे हैं क्यों, किसका भजन किया जाए नहीं भजन किया जाए? आपने ये ठीक से विचार करके सामंजस्य करके ये नहीं बतलाया। दूसरी बात, वेदों में लिखा गया मधु ब्रह्म माधुर्य एव ब्रह्म, मधु ये ब्रह्म है। मधु क्या, मधुमक्खी वाला मधु नहीं, प्रेम रूप मधु ये भगवत का स्वरूप है। आनंदम अयम ब्रह्म, ब्रह्म आनंद स्वरूप है। यदि ब्रह्म की अनुभूति हो जाएगी, भगवान की अनुभूति होगी, तो जयात्मा संप्रसिद्धति श्रीमद् भागवत में लिखा गया, सबै पुंसां परो धर्मो जतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य अपतिहात्मा जयात्मा संप्रसिद्धति। भगवान के प्रति अहेतु की भक्ति करने पर निश्चित रूप में आत्मा प्रसन्न होगी, तो इसका मतलब हो जाए आपने अहेतु की भक्ति नहीं की इसलिए आपका चित्त खिन्न है। आप भगवान का अमल जस वर्णन करें, वह रस स्वरूप है, वह जो भगवान है परतत्व वह रस स्वरूप है। रसासी वायं लब्ध्वा आनंदी भवती, जो ब्रह्म रस स्वरूप है, जो आनंदमय है, जो मधुर स्वरूप है, वो आनंदमय भी है, वो रसिक भी है। केवल आनंद स्वरूप नहीं, केवल ज्ञान स्वरूप नहीं, वो आनंदमय अभ्यासात ब्रह्म सूत्र में भी कहा गया वो आनंदमय है। निगम कल्प स्वरूर गलितं फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम इत्यादि में बतलाया गया, तो वो रस स्वरूप है और उसको जो प्राप्त करता है वो आनंद स्वरूप हो जाता है, रसमय वो भी हो जाता है। कृष्ण आनंद होते हुए भी रस स्वरूप होने पर भी रसिक भी हैं, इस आनंद का आस्वादन करके वो रस में डूब जाते हैं, इसलिए वो अखिल रसामृत मूर्ति हैं, रस की मूर्ति स्वरूप है। जो उनका अनुभव करता है वो रस में डूब जाता है, आनंद में डूब जाता है। आपने तो इसका वर्णन किया नहीं कुछ, इसका कुछ भी यदि आप देते आपकी ये अवस्था नहीं होती। आपने परम ब्रह्म की बात आपने कही नहीं। कृष्ण स्वयं पर ब्रह्म है, वो रस स्वरूप है, वे आनंदमय है, वो मधु है, और उनको आस्वादन करके सभी लोग आनंद स्वरूप हो सकते हैं। आपने इसका विवरण नहीं दिया। आपने जिस धर्म की टीका की है, व्याख्या दी है, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में आपने जो व्याख्या दी, महाभारत में जो व्याख्या थी धर्म की और सत्कर्म की, और जगत के लोगों को सिखलाया, उसके संबंध में मेरा ये कहना है, नारद जी का है, निष्कर्ममपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। कहते हैं जो निष्कर्म अर्थात निष्काम जो कर्म है, इसकी तो बात ही क्या, या कर्म की जो अमल निरंजन ज्ञान है, कौन सा ज्ञान, जो गीता में कहा गया, जो वेदांत में कहा गया, वेदों में कहा गया, इसी की ही शोभा नहीं है यदि भगवान के चरण कमलों का अनादर कोई करे तो। ऐसा निरंजन अमल ज्ञान भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए भगवान के आप करुणा की गाथा, उनकी लीलाओं का गाथा कुछ वर्णन कीजिए। उन्होंने कहा, ओहो मैं तो ये सब जानता नहीं, मैं कैसे इसका वर्णन करूं। उन्होंने कहा ये बहुत सहज सरल तरीका है, ज्ञान के द्वारा उसे नहीं जान सकते, अवांग मन सो गोचर है, वैराग्य के द्वारा उनको नहीं कोई जान सकता, नयात्मा प्रवचन न लभ्य हो, प्रवचन के द्वारा, मेधा शक्ति के द्वारा नहीं होगा। इसीलिए गीता में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। यदि कोई भगवान को जानना चाहता है तो भगवान का सबसे पहले अनकंडीशनल सरेंडर करें उनके चरणों में, और तब उसके हृदय में आकर के अपने को स्फूर्ति कर देंगे जे कैसा मैं हूं, कौन हूं। इसलिए आप भक्ति योग का अनुष्ठान करें, अपने चित्त को ये कहें मैं तुम्हारा हूं, आप मेरे हैं, यही भक्ति योग है। आप भक्ति योग का अनुष्ठान की, नारद जी का करके चले गए, और ये अपने निर्जन आश्रम में जहां पर भगवती गंगा कलकल बह रही थी, जिसमें पास ही में उपवन में बेली चमेली इत्यादि के फूल खिले हुए हैं, वहां पर क्वेल कुहक रही है, कुहू कुहू कर रही, अत्यंत निर्जन प्रदेश, उसमें उन्होंने ध्यान लगाया। धीमही सत्यम परम धीमही, मैं उनका ध्यान करता हूं। ध्यान करने से क्या होगा, हमारे धीमे बुद्धि वृत्ति में प्रचोदयात, प्रच उदयात, मैं उनको आत्मा आत्मसमर्पण करता हूं, हमारी बुद्धि को पवित्र कर और हमारी बुद्धि में अपने को प्रकाशित करें, उदयात उदय हों, तभी उनको जाना जा सकता है। इसलिए हे प्रभो मैंने अपने को आपके चरणों में संपूर्ण रूप से आत्मनिवेदन कर दिया, इसलिए आपका शरणागत हूं। अब आप कैसे हैं, आपकी लीलाएं क्या हैं, ये कृपा करके हमारे हृदय में स्फूर्ति प्राप्त हो। साथ ही साथ में भक्ति योगेन मनसा अपश्यत पुरुषम पूर्ण मायांच जद अपाश्रयाम। उन्होंने देखा भक्ति योग से उनका चित्त निर्मल हो गया, और उसमें भगवान अपश्यत पुरुषो पूर्णम, परम पूर्ण ब्रह्म को उन्होंने देखा, कौन से, जिसको वेदों में कहा गया, श्रुतियों में कहा गया है, पूर्णम इदम पूर्णम अदह पूर्णात पूर्णम उदुच्यते पूर्णस्य पूर्णम एव आदाय पूर्णम एव अवश्यते। ये पूर्ण ब्रह्म कौन, पूर्ण कैसे होगा, भगवान शक्तिमान के अतिरिक्त शक्तिमान है, उनका रूप है, उनका गुण है, बड़े दयालु हैं। वेदों में कहीं कहीं लिखा गया अपाणि पादो जमना गृहीता, भगवान तो निर्गुण है, निराकार है, निरंजन है, अव्यक्त है, अनादि है, निशक्ति है, कहीं लिखा गया? नारद जी ने उनको कहा था भगवान ऐसे नहीं है, यदि उनका आकार नहीं तो इस जगत में आकार कैसे होगा? समस्त आकारों के मूल रूट वो हैं। कॉज एंड एक्शन थ्योरी के अनुसार में यदि कारण में ही ये रूप नहीं है तो ये रूप उनसे कैसे होगा? इसलिए यदि ब्रह्म से इस जगत की सृष्टि हुए लाखों रूप करोड़ों रूप निकले हैं, उनमें जरूर रूप की सत्ता है, किंतु हम उनको देख नहीं पाते हैं इन आंखों से, इसलिए निराकार कहते हैं। हम तो एक हवा को भी नहीं देखते, उनको क्या देखेंगे? इसलिए अब आज उन्होंने देखा पूर्ण ब्रह्म को, क्या देखा? नारायण परतत्व हैं, राम परतत्व भी हैं, नृसिंह भगवत अवतार हैं, किंतु इनका कुछ वैशिष्ट्य निराला है। इनमें चार माधुरी विशेष रूप से इनमें परतत्व कृष्ण में है, रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और लीला माधुरी, चार विशेषताएं हैं जो और किसी में नहीं है। यदि कोई नारायण को सखा के रूप में भजन करना चाहे तो नहीं भजन कर सकता है, नारायण का कोई सखा नहीं। माता पिता के रूप में उनका भजन करना चाहे नहीं कर सकता, वो जगत के माता पिता, उनका जगत कौन माता पिता होगा? ये एक ही परतत्व के विभिन्न झांकियां हैं, अलग अलग तत्व नारायण और कृष्ण राम इत्यादि नहीं है, ब्रह्मा अलग से नहीं है, एक ही परतत्व अद्वितीय है। इसलिए श्रीमद् भागवत में पहले ही बतलाया गया बदंती तत्व विदस्त तत्त्वम ज्ञानम अद्वयम्, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते, एक ही को बतलाया, एक ही परतत्व है। जैसे एक चांद पूर्णिमा को अपना पूर्ण प्रकाश देता है, द्वितीया को दो कलाएं, तृतीया को तीन कलाएं, अष्टमी को अष्ट कलाएं, ये चंद्र अलग अलग नहीं है। हम लोग पृथ्वी के जिस एंगल ऑफ विजन से हम देखते हैं उनको, कभी पूर्णिमा देखते हैं, कभी कुछ देखते हैं, कभी कुछ देखते हैं, ये रोटेशन के वजह से ऐसा होता है। यथार्थ में चंद्र सब समय पूर्ण है, ऐसे भगवान की पूर्णता जब कृष्ण अपनी शक्ति के साथ में हो और समस्त रसों के द्वारा उपासित हो, और जब विशेष करके मुरली साथ में हो, साथ साथ में अत्यंत अद्भुत रूप हो, अत्यंत उनकी लीला माधुरी हो, तब ये परब्रह्म कहलाते हैं। 16 कलाओं में इनको कहा जाता है, एक ही तत्व। रूप माधुरी कैसी उन्होंने कैसी देखी? नारद जी के कहने से व्यास जी ने बैठे बैठे देखा, कैसी रूप उनका अद्भुत रूप, इसके संबंध में बतलाते हैं भागवत में, वो वर्णन करेंगे कैसा रूप देखा। उसी को ये भागवत में जो कुछ उन्होंने देखा उसको उन्होंने व्यक्त किया, इसलिए शाश्वत संहिता कहलाती है। उन्होंने जो कुछ देखा जीवों के कल्याण के लिए, जो नहीं जानते हैं उन्होंने अभिव्यक्ति की। जैसा वै सूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रूप पद्यते पुंसं शोक मोह भयापरा, जिनकी लीला कथाओं के श्रवण करने से, जिनका तत्व श्रवण करने से शोक मोह और भय जन संसार में जो हैं, और हम लोग तत्व ज्ञान के संबंध में जो अंधे हैं, ये सब कुछ दूर हो जाता है और कृष्ण के चरणों में प्रेमा भक्ति मिलती है, लगती है। इसलिए जगत के कल्याण के लिए इसे मैं कर रहा हूं। इसलिए सबसे पहले उन्होंने वंदना करने के बाद में लिखा निगम कल्प सरोर गलितम सुख मुखाद अमृत दर्शन युतम पिवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूभाग। हे रसिका, हे रसिक, हे भावुक लोग, आप लोग इसको श्रवण करें, और कब तक श्रवण करें? जब तक कि श्रवण करते 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 प्रेम में बढ़ करके शरीर की शुद्ध बुद्धि खो नहीं जाती और आनंद की मूर्छा में नहीं जाती। मुक्ति के बाद भी इसका श्रवण करना चाहिए, मुक्ति के पहले इसका श्रवण करने से अनुभव नहीं होता। इसलिए संसारिक आसक्ति रूपी मुक्ति को दूर करके यही हमारा अंधापन है। आसक्ति दूर करके संसार से अपने कर्तव्य पर पथ पर आरूढ़ रह करके इसको श्रवण करो। ये कैसा है? निगम कल्प तरोर गलितंग फलम। निगम माने वेद, श्रुति, उपनिषद, पुराण इत्यादि क्या है? ये कल्प तरु है और इसका ये प्रपक्व फल है जिसमें गुठली, छिलके, रेशे, कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसको फेंका जा सके, ऐसा श्रीमद् भागवत रस ग्रंथ है। तो कहा जिसे श्रुति और वेद तो कल्प तरु हैं तो फिर फल की जरूरत क्या है? कहते हैं कि देखो, कल्प तरु रहने से भी, पेड़ रहने से भी पेड़ की जड़ में रस होता है, उसको चूसने से स्वाद नहीं आएगा, उसके पत्तियों का चिबाने से वो रस नहीं आएगा, उसके डालियों और फूलों को भी चूसने से वो रस नहीं आएगा, उसमें से नीचे से रस जाकर के ऊपर में जाकर के फल में जाता है, जब वो प्रपक्व हो जाता है, पक जाता है, तब आम मीठा और मधुर होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प तरु का यह प्रपक्व और मधुर बिना छिलका और गुठली का ये फल है, इसलिए इसको श्रवण करो। इसे सहज सरल में रूप में जिस प्रकार से परीक्षित महाराज जी की सुगति होकर के गोलोक वृंदावन में पहुंच करके और गोपी भाव में आए और सारा साथ साधन किया, आप लोग भी इसका श्रवण करें। व्यास जी कह रहे हैं किस तरह का इसका रूप कैसा है उस पर ब्रह्म का, इस पर थोड़ा सा बतला रहे हैं कैसा सुंदर अद्भुत मधुर रूप उनका है। कृष्ण ने मधुर बंसी बजाई, जितनी गोपियां थीं उनके कानों में ये बंसी ध्वनि उपस्थित हुई। जगत में इसका कोई योग्याधिकारी नहीं था, इसलिए ब्रह्मांड को पार कर गई, बैकुंठ में पहुंची, वहां पर देखा कि कोई भी अधिकारी इस बंसी के श्रवण का नहीं है, इसलिए ऊपर उठ गई। अयोध्या में गई, कोई योग्य अधिकारी नहीं, इसके ऊपर में गई द्वारका में महिषियों के यहां, देखा जे ये भी अधिकारी नहीं, उसको पार करके मथुरा को भी पार करके ब्रज में गई, ब्रज में माताएं सो रही थी उनके कानों में नहीं गया, सखा लोग भी थे उनके कानों में भी ये रंध्र मधुर वीणा का स्वर नहीं, वेणु का स्वर नहीं गया, माताओं के भी कानों में नहीं गया, ये गया कहां? उन गोप रमणियों के, उनके कानों में गया और उनको उन्मत्त कर दिया। वो जहां थी वहीं से उन्मत्त होकर के दौड़ी, कोई श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में अंजन लगाया था, दस्त वस्त्राभरणा, एक आंख में केवल लगाया, वहीं से चल पड़ी। एक सखी उनको लगा रही है, दूसरे आंख में कहिए इसको भी लगा करके जाओ, नहीं, एकदम चल पड़ी। अजगमो अन्यो अन्यम अलक्षितो दमा, एक दूसरे को ना देख पाए, अलग अलग दौड़ी, कानों में कुंडल झलक रहे हैं, घर में नहीं रह सकी, कोई रोटी बना रही थी उसको तवे पर छोड़ दिया, जो अपने पतियों की सेवा कर रही थी, परवेशन कर रही थी, दे रही थी भोजन, परवेशन कर रही थी, बस वहीं से छोड़ दिया, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी वहीं से छोड़ दिया, जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में चल पड़ी, कोई गले का हार कमर में पहन लिया, कोई कमर का हार गले में पहन ली, जो जिस अवस्था में वहीं से भागी। वहां पहुंच करके जब कृष्ण के पास में पहुंची तो कृष्ण ने कहा, स्वागतम वो महाभागा किं कर्माणि, मैं आपके लिए क्या करूं, आपका स्वागत है, आप तो यहां पर पधारी। वो कुछ नहीं बोली, खड़ी रही। कृष्ण ने कहा, अब तो हमें देखा, हमारा दर्शन कर लिया, आप लौट जाओ घर में। चुपचाप खड़ी रही। इनके कहने का मतलब क्या? फिर कृष्ण ने कहा, घर में लौट जाइए, वन की शोभा देखने के लिए आई, देखा कितना सुंदर राकेश कर रंजितम, चंद्र अपने लाल लाल किरणों से पूर्व दिशा को वो अपनी प्रेयसी को किस प्रकार से लाल अर्थात अभी रंग से उनका मुखमंडल लेपन कर दिया। चारों तरफ वातावरण एकदम लाल हो रहा है, अनुराग का रंग है लाल। इसको आपने दर्शन किया, ठीक है, अब तो घर में लौटना आपको उचित है। चाहे पति अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, अर्थ रोजगार नहीं कर सकता, निर्धन हो गया हो, जैसा भी हो, तुम्हारे किसी मतलब का नहीं, तो भी स्त्रियों का कर्तव्य है अपने पति की सेवा करना। इसलिए आप लोग घर में लौट जाएं, पतियों की सेवा करें, बच्चों को दूध पिलाएं, गायों का ग्रहण करें, गायें डकर रही होंगी, आपको चला जाना उचित है। फिर भी चुपचाप खड़ी रही है स्तब्ध होकर के, फिर कहते हैं देखो स्त्रियों के लिए सबसे बढ़कर के अधर्म पति की सेवा छोड़ना है, इसलिए चला जाना चाहिए, पति की सेवा करो, रात बड़ी भयंकर है, यह निशा कैसी भयानक है, कह रहे हैं घोर यह रात्र और घोर सत्व निवेशिता, घोर जानवर, बड़े भयानक जानवर इसमें है, बड़ा घोर अंधकार हो रहा है स्त्रियों के लिए इस वन में अकेले, जहां पर मैं अकेला और तुम अकेली, और कैसी परम किशोरियां परम सुंदरी तुम लोग, जमुना का किनारा अत्यंत सुंदर सुहावना, कम उद्दीपन के लिए जो जो चीज की आवश्यकता है सब उसी निशा में सब प्रकट हैं, इसलिए यहां पर तुम्हारा एक मिनट का ठहरना भी उचित नहीं, इसे स्वर्ग से आदमी गिर जाता है और अस्वर्गम और जसस कर्म इसे बड़ी दुर्नाम होता है। यदि कोई यहां पर आए तो हमें और तुम्हें देखकर के क्या सोचेगा, इसलिए जल्दी से लौट जाओ। स्त्रियां जो गोप रमणियां थी और तो बहुत सी बातें कहीं, उसमें थोड़ी सी कह करके मैं आगे बढ़ूंगा, ये कैसा कृष्ण का रूप है इस पर विषय पर हमको चलना है। तो वो कह रही हैं देखो आप तो उपदेश देने वालों में इतना सुंदर हमें उपदेश दिया, आज तक हमको ऐसा कोई उपदेश नहीं दिया, इसलिए आप हमारे गुरु हैं। तो शास्त्रों का ऐसा उद्देश्य है कि सबसे पहले गुरु की पूजा करके तब भगवान की पूजा हो। तो आप तो मेरे गुरु हैं ना, इतना सुंदर उपदेश दिया हमको, इतना दीक्षा दी, इससे पहले आपकी हम सेवा कर लें, और यदि नहीं आप स्वीकार करते तो आप अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे, ये समझिए। क्यों क्यों भ्रष्ट हो जाएंगे? इसलिए भ्रष्ट होंगे, आपने गीता में ये तो लिखा है ना, जे जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो जैसा हमारा भजन करता है मैं उसके अनुरूप उसको फल देता हूं, मैं उसी रूप में उस व्यक्ति को अंगीकार करता हूं। तो हम आपके पास में जिस रूप में आई हैं उस रूप में यदि अंगीकार नहीं करते, हमारी सेवा नहीं लेते, तो आप गुरु पद से भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए धर्म का भय आपको होना चाहिए, हमें नहीं। हमें तो इसी की चिंता लग रही है, अपने धर्म से आप भ्रष्ट हो रहे हैं। हमको बुलाया आपने, हम आई, और हमें छोड़ करके आप हमें लौटने के लिए आते हैं। अरे भाई घोर निशा कहाँ है? ये तो अष्टमी का चांद है, पूर्णिमा चांद, इसमें तो रात अंधकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। और इस वृंदावन में जमुना के किनारे हिरण विचरण करते हैं, कोयल कुहकती है, मोर नित्य करते हैं, बेली चमेली समस्त ऋतुओं के फूल एक साथ में खिलते हैं, भ्रमर गुंजार करते हैं, सारा वातावरण राधा और कृष्णमय हो जाता है। वहां राधे राधे, वहां के चौकीदार भी आज भी कहते हैं मथुरा माँ और वृंदावन में राधे राधे, सबको आवाज दे करके उठाते हैं। जो वृंदावन में मथुरा में रहे होंगे वो लोग समझेंगे। तो कहां घोर रात है, अंधकार कहां, और जंगली जानवर यहां हाथी बनेले बाघ और सिंह तो यहां है नहीं, और पति जगत का कौन है, पतियों के पतियों के पति के मूल पति कौन है जगत के, कृष्ण ही जगत के पति हैं। इसलिए आप ही कहते हैं कि पतियों की सेवा करें, ये तो हर मांस और रक्त का ये थैला एक है, यह पति नहीं। और यदि कहो आत्मा, तो समस्त आत्मा तो समझ जाती हैं एक दूसरे की स्त्री और पति, पुत्र भाई बंधु, ये सब संबंध वहां नहीं है। एक मात्र कृष्ण ही जगत में पुरुष हैं, बाकी सब उनकी शक्ति के द्वारा परिणत और उनसे प्रकाशित हैं। इसलिए आप ही जगत के पति हैं, आपको छोड़कर के हम कहां जाएं। उसी में एक श्लोक कह रहे हैं, का स्त्रियंग ते कल्पदायत बेनु गीत सम्मोहिता आर्चरिता न चले त्रैलोक्यम सर्वलक्ष सौभगम इदंच निरुक्ष रूपम जद गो द्रुम द्विज मिगा पुलकान विभ्रम। कृष्ण के रूप का बड़े मार्मिक सुंदर रूप में ये वर्णन कर रही हैं। पहले पूर्वराग में उन्होंने वर्णन किया था, व्यास जी ने या सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया, कृष्ण का सबसे सुंदर रूप गोपियां देख रही हैं। वो रूप क्या है? बरहापीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वास कनक कपि संभय जयंती चमालम रंधान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम शपद रमणम पाबिशत गीत कृति। भागवत में यदि कृष्ण का जहां भी रूप है बहुत से रूप का वर्णन किया गया, किंतु सबसे मार्वलस और सबसे श्रेष्ठ रूप गोपियों का जो ये देखा, तो उसके लिए कह रही हैं कैसा ये रूप का है। साधारण रूप में इसका शाब्दिक अर्थ यह है, श्याम कृष्ण का अंग है, मानो मेघ है, इस पर स्थिर विद्युत लहरा रही है, बिजली जैसे चमकती है वैसा पीतंबर, और गले में पैरों तक लगने वाली 5 या 7 फूलों की बड़ी सुगंधित माला है जिसको बैजयंती कहते हैं। एक कान पर एक कनेर का फूल है पीला सा, जो बड़ा फपता है इस श्याम शरीर पर, जिसको देख करके मोर नृत्य करने लगता है, अपने आप समझता है ये मेघ है बरसनेंगे अब। और उसको कृष्ण कभी एक कान से लेकर कभी इस पर रखते हैं, कभी जैसे छोटा सा किशोर बालक अल्हड़ अवस्था में, अल्हड़ आप लोग जानते होंगे, बड़ा अल्हड़, आजकल अल्हड़पन होता है, बैठा मोटा मन लगाइए, केस कहां इधर उधर लुढ़क रहे हैं, ये अल्हड़ता कहते हैं। ये अल्हड़ता नहीं, ये कुछ और चीज है, वो प्रेम में दीवाना होने वाले का वो अल्हड़पन, और कृष्ण स्वयं वो प्रेम स्वरूप, प्रेम की मूर्ति है, अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण है। ऐसा अद्भुत रूप जिसको हिरण देख ले तो हिरणी आगे बढ़कर के आंखों से प्रणय की भीख मांगते हुए आगे बढ़ जाती है। आकाश के मेघ एकदम उनके ऊपर में छत्र छाया कर करके शीतल शीतल बूंदे बरसाने लगते हैं बड़े प्रेम की। नदी में उमंग ऐसी आती है यमुना में, वो क्या करती हैं, वो आगे बढ़कर के कृष्ण को आलिंगन करना चाहती हैं अपने हाथों से, मानो पानी बढ़ गया आलिंगन किया, और फिर अपने हाथों में जब कृष्ण ने उनके तरफ में नहीं ध्यान दिया तो वो नीचे लज्जित होकर के नीचे उतर आई, और अपने हाथों से माने अपनी लहरों से कमल के फूलों को लेकर के कृष्ण के चरणों में उपहार देने लगी। गोपियां कहते हैं कि यदि मर करके हम हिरणी बन जाए तो हमारा जीवन सौभाग्य बन जाए, कोई रोक टोक नहीं करेगा, हमारे पति नहीं रोक सकेंगे, हमारी सास नहीं, हमारी ननद नहीं रोक सके, ये प्रेम है गोपियों का। वो कहती हैं ओह ये हिरणी धन्य है, उसका पति वो काला धब्बा वाला कृष्णसार हिरण आगे लेकर के और उनको लेकर के चलता है। अच्छा तुम कृष्ण से प्रेम कर रही है, अब चलो चलो आगे, कोई डरने की बात नहीं, मैं पीछे हूं ना, और हमारे पति यदि सुन लें जैसे ये कृष्ण से प्यार करती है तो घर में घुसने ना दें, कबाट बंद करके रख देंगे हमें, हमारी ननद और सास कितनी हमारी बुराई करती है, इसलिए मर करके अब हिरण होंगी, तब कभी ऐसा स्वच्छंद कृष्ण से प्यार करने को मिलेगा। तो का स्त्रियंग ते कल्पदायत बेनु गीत, कृष्ण से वो गोपियां कह रही हैं आप हमें धर्म का भय दिखला रहे हैं, धर्म उल्लंघन का तुम्हें बहुत अकृति होगी, इसलिए घर में लौटो। कहते हैं का स्त्रियम, स्त्रियों की तो बात क्या, हम लोगों का सब कोमल और मधुर स्वभाव है, जहां हम सुंदर रूप देखा, जहां सुंदर स्वर सुना किसी का, वहीं पर हम अपने आप से बाहर हो जाते हैं। तो आपकी यदि हम धर्म से उल्टा कुछ कर रही हैं, यदि आप ऐसा देखते हैं, तो इसका कारण आप में है, आप इसके कारण हैं हमारे धर्म से भ्रष्ट होने का। क्यों? आपको देख करके और कल्पदायत बेनु गीत अत्यंत असमोर्ध रूप जिनका है, नारायण का भी इतना रूप नहीं है जितना कृष्ण का है, राम का भी बहुत सुंदर रूप है, कितना सुंदर रूप इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, किंतु ये लक्ष्मी जी नारायण को छोड़कर वृंदावन के बेलदल में आज भी तपस्या कर रही हैं कृष्ण के रास में प्रवेश करने के लिए, किंतु आज तक भी उनको ये नहीं मिला, ये आनंद नहीं मिला। इस तरह से सीता जी परम सुंदरी हैं, राम की उपासना करती हैं, किंतु कृष्ण को देखने से वो भी मोहित हो जाएंगी। रुक्मिणी और सप्तभामा की तो आप तो बात ही जानते हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं, कितने सुंदर सरस ये है। इसलिए यदि हम लोग अपने धर्म को छोड़ करके हम लोग अपने धर्म का व्यतिरिक्त कर रहे हैं तो ये दोष आपका है, आपके इस रूप का और आपके इस वेणु स्वर का, ये है हमारा दोष नहीं। क्यों? आपका इतना जो सुंदर रूप है और उसमें जो मधुर रूप है, इसके वजह से ही हम अपने धर्म को छोड़ दिया। हम लोगों की तो बात क्या है, गो द्रुम द्विज मृगा पुलकान्य विभ्रम, जड़ जंगम बन जाता है और जंगम जड़ बन जाता है, चेतन अचेतन बन जाता है आपके रूप और आपकी बंसी को ध्वनि दे करके, और अचेतन चेतन बन जाता है। कैसे? पत्थर पिघल जाते हैं आपकी बंसी की ध्वनि से। अभी भी वृंदावन में आप जाइए, काम्य वन के अंतर्गत में या और जगहों में, नंदगांव में कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले वेणु बजाई और पत्थर एकदम पिघल गया, उसमें गायों के पैरों का चिन्ह, कृष्ण के चरणों का चिन्ह, बलदेव जी के चरणों का चिन्ह, हिरणों के चिन्ह, ये सब अभी आपको मिलेंगे। जीगता जागता हुआ प्रमाण किसी ने बनाया नहीं, नहीं तो भागवत में लिखा गया, इसके बाद में वल्लभाचार्य ने लिखा, इसके बाद में मध्वाचार्य ने लिखा, ये गलत नहीं लिख सकते। उपनिषदों में वेदों में चारों तरफ में इसके प्रमाण है, इसलिए किसी ने पीछे से अंकित नहीं किया उनके चिन्हों को। अभी भी आप जाएंगे जगह जगह में इनके चरणों के चिन्ह मिलेंगे, जहां पर बंसी बजाई और पत्थर पिघल गया। इसलिए कहते हैं कि वो जड़ चेतन बन गया और चेतन मृगा जो चलने वाले लोगों से डरते हैं वो चुपचाप खड़े होकर के स्तब्ध हो गए। यमुना जी चलने वाली, हुआ क्या, कृष्ण ने बंसी बजाई वेणु ध्वनि की और नीचे जो धारा जा रही है उल्टे उलट करके चली सुनने के लिए, और ऊपर वाली जा रही, दोनों में टक्कर होने से अब नीचे जा नहीं रही, अब होगा तो वहां पर भ्रमर पड़ गया। इस तरह से जड़ चेतन और अचेतन हो जाते हैं। पशु भी जो चलने वाले हैं, पक्षी एकदम चुपचाप ध्यानस्थ होकर के वहां पर सुनने लगते हैं। कृष्ण का ऐसा सुंदर है, इसी रूप का वर्णन करते हुए गोपियां पूर्वराग में बतला रही हैं। एक वेणु गीत का मैं एक श्लोक की व्याख्या करूंगा और तब तक शायद समय भी पूरा हो जाए, और कल हम इसके आगे की कुछ बात बतलाएंगे। कह रहे हैं गोपियां, कृष्ण शरद ऋतु में यमुना के किनारे उपवन में बंसी बजाई रात के पहले, वहां पर गोपियां सुन करके उसका वर्णन कर रही है कृष्ण के परोक्ष में। कृष्ण तो जा रहे हैं गोचारण के लिए और ये घरों में बैठी हुई परस्पर समझाती है, जो गोपियां हैं परस्पर उसका वर्णन कर रही हैं। तो कह रही हैं अक्षमतांग फलम इदम न परम विदाम सख्यु अनुबेश यथोर्वयश्चई वक्त्रम ब्रजेश सुतयो अनुबेनुजुष्टम जैवानिपीतम अनुराक्त कटाक्षमोक्षम। कह रहे हैं अक्षमतांग फलम इदम न परम विदाम, गोपिया कह रही हैं भाव नेत्र से देख रही हैं, घर में बैठी हैं किंतु देख रही हैं कृष्ण गोचारण के लिए एक वन से अन्य वन में चले जा रहे हैं। यदि व्यास की दी हुई दिव्य दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से संजय अपने राजभवन में हस्तिनापुर में बैठा हुआ और सारी बातें जैसा का तैसा शब्द भी और का क्या क्या हो रहा, कौन कौन लड़ रहे हैं, कौन कौन मर रहे हैं, ये वहां राजधानी में हस्तिनापुर में बैठे हुए उनको सभी कुछ बतला रहे हैं, ये किस चीज के प्रभाव से? व्यास जी ने उनको दिव्य दृष्टि, ये दिव्य दृष्टि क्या, भक्ति का पहला चरण आभास है, इसको उन्होंने दी और उसके द्वारा बैठे हुए सब कुछ देख रहे हैं जो वहां पर क्या, अर्जुन क्या कर रहा, दुर्योधन क्या कर रहा, भीष्म पितामह जी कर्ण क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ने? गीता का जो उपदेश था ना, सारा गीता का उपदेश एज इट इज जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया उनको सुना रहे हैं। तो गोपियां भक्ति के प्रभाव से, भक्ति की मूर्तिमान वो विग्रह है वो नहीं जान सकती, इसलिए भाव नेत्रों से देख रही हैं। कृष्ण गायों को लेकर के एक वन से दूसरे वन में चले जा, लाखों उनके सेवक उनके द्वाल बाल सखा हैं, दाम श्रीदाम सुदाम वसुदाम पिस्तो कृष्ण लवंग अर्जुन सुबल मधुमंगल इत्यादि लाखों। गायें कितनी हैं? केवल नंद बाबा की 900,000 गायें और विश्वभानु महाराज की 11,000 गायें और ऐसे ही सब लोग गायें। अरे भाई वृंदावन में तो छोटा सा वन, यहाँ पर करोड़ों करोड़ों गाय कहाँ से रहेंगी? भाई कृष्ण जैसे चिन्मय है, अपने मुख के अंदर में विश्व ब्रह्मांड अर्जुन को जैसे दिखला दिया, अपने छोटे से मुख में अभी जो भी एक वर्ष के थे अपनी मैया को विश्व ब्रह्मांड सब उनको अपने मुख में दिखाया, वैसे उनका धाम भी चिन्मय होता है, वो कृष्ण ही धाम बने हुए बलदेव जी, इसलिए वो कभी कभी इच्छा करने पर संकोच और कभी कभी उनका विस्तार है। लाखों करोड़ों ब्रह्मा सब ब्रह्मांड कृष्ण के मुख में है, ये तो वृंदावन इतना विशाल, इसलिए ये शंका नहीं उठेगी, नहीं तो कृष्ण की भगवत्ता कहां रही? वो स्वयं भगवान है, कर तुम आकर तुम अन्यथा सर्व कुछ कर तुम समर्थ, वो सब कुछ करने में अघटन घटन पटी ऐसी